श्रोताओं, आप सभी का मार्गदर्शक कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। इन दिनों में हम एक नई अध्ययन श्रृंखला का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम है एक नायक की चित्रकला, और मुझे आशा है कि इस कार्यक्रम से आपको बहुत आशीष प्राप्त होगी। तो आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए सुनते हैं एक मधुर गीत।
प्रशंसा योग्य वही Listening friends.
Namaskar shrota mitro.
What a delight it is to know that you have tuned into this broadcast.
Ye jankar hum bahut anandit hain ki aap is prasaran mein sammilit hue hain.
We are continuing in the life of Moses.
Hum Musa ke jeevan ko dekhna jari rakhenge.
And I want to begin today by asking you a question.
Aur aaj main aapse ek prashn poochte hue prarambh karna chahta hu.
Have you ever experienced unfair criticism?
Kya aapne kabhi anuchit alochna ka anubhav kiya hai?
Or have you ever been criticized for doing something good?
Ya kya kabhi aapko kisi acche kaam ke liye alochna sehni padi hai?
Then you will understand how Moses felt.
तो फिर आप समझ सकते हैं कि मूसा को कैसा महसूस हुआ होगा।
There is something important I need to tell you here.
यहाँ कुछ बहुत महत्वपूर्ण है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ।
Critical people do not focus on the important things.
आलोचना करने वाले लोग महत्वपूर्ण बातों पर गौर नहीं करते।
Critical people often criticize the trivial things.
आलोचना करने वाले लोग अक्सर महत्वहीन बातों की आलोचना करते हैं।
Why do they do that?
वो ऐसा क्यों करते हैं?
Because the root of their critical spirit is not what they are criticizing.
क्योंकि उनकी आलोचक आत्मा की जड़ वो नहीं होती जिसकी वो आलोचना करते हैं।
But it is often envy and jealousy.
परंतु ये अक्सर ईर्ष्या और जलन होती है।
And envy and jealousy manifest themselves in being critical.
और ईर्ष्या और जलन अपने आप को एक आलोचक बनकर प्रकट करती है।
Critical people do not come out and say, "I am jealous of you because of this or that."
आलोचक लोग सामने आकर नहीं कहते कि मैं इस या उस वजह से तुमसे जलन रखता हूँ।
Or that I'm envious of what you have.
या कि जो कुछ तुम्हारे पास है उसके कारण मुझे ईर्ष्या है।
No, no, no.
नहीं, नहीं, नहीं।
They disguise their criticism.
वो उस आलोचना का भेष बदल देते हैं।
They make their criticism sound so important.
वो उस आलोचना को बहुत महत्वपूर्ण दर्शाते हैं।
They make criticism sound so spiritual.
वो आलोचना को बहुत आत्मिक दर्शाते हैं।
They disguised it in sound reason.
वो इसे एक अच्छे कारण में लपेट देते हैं।
And that's what Miriam and Aaron did to Moses.
और यही मिरियम और हारून ने मूसा के साथ किया।
They were jealous and envious of Moses and his leadership.
वो मूसा और उसके नेतृत्व से ईर्ष्या और जलन रखते थे।
They were jealous and envious of Moses's godly anointing.
उन्हें मूसा के ईश्वरीय अभिषेक से ईर्ष्या और जलन थी।
So instead of coming out and saying it in the open,
तो सामने आकर खुलेआम इसे कहने के बजाय,
they criticized him for marrying a Midianite wife.
उन्होंने एक मिद्यानी स्त्री के साथ विवाह के कारण उसकी आलोचना की।
I think there is a Miriam and Aaron in every family.
मेरा ख्याल है कि हर परिवार में एक मिरियम और हारून है।
I think there is a Miriam and Aaron in every workplace.
मेरा ख्याल है कि हर कार्यस्थल में एक मिरियम और हारून है।
I think there is a Miriam and Aaron in every church.
मेरा विचार है कि हर कलीसिया में एक मिरियम और हारून है।
A Miriam who would instigate the criticism.
एक मिरियम जो आलोचना को उकसाती है।
And an Aaron who just goes along.
और एक हारून जो उसका साथ देता है।
A Miriam who ferments criticism.
एक मिरियम जो आलोचना को भड़काती है।
And an Aaron who says, "You're right."
और एक हारून जो कहता है, हाँ तुम ठीक हो।
A Miriam who starts the gossip chain.
एक मिरियम जो गपबाजी की लड़ी को शुरू करती है,
and an Aaron who naively repeats it.
और एक हारून जो भोलेपन से उसे दोहराता जाता है.
Miriam's role can be played by a male or female.
मिरियम के स्थान पर पुरुष या स्त्री हो सकती है.
Just as Aaron's role can be played by a male or female.
बिल्कुल वैसे ही जैसे हारून का पात्र भी पुरुष या स्त्री कोई भी निभा सकता है.
Personal criticism, even when it is justified, is always painful.
व्यक्तिगत आलोचना चाहे जब ये सही भी हो हमेशा पीड़ादायक होती है.
But unjust criticism hurts deeply.
परंतु अनुचित आलोचना गहरी पीड़ा पहुंचाती है.
Especially when it comes from someone whom you love and trust.
खासकर तब जब ये कोई ऐसा व्यक्ति करता है जिस पर आप प्रेम और भरोसा करते हैं.
What makes this criticism of Moses excruciating?
मूसा की ये आलोचना इतनी तीक्ष्ण इसलिए है.
Is that it questioned his motive?
क्योंकि इसने उसके उद्देश्यों पर सवाल उठाए.
After all that Moses did for them.
उस सब के बाद जो मूसा ने उनके लिए किया.
After fighting so many personal battles with them,
उनके साथ इतनी व्यक्तिगत लड़ाइयां लड़ने के बाद,
regarding their immorality,
उनकी अनैतिकता के विषय पर,
regarding their murmur,
उनकी कुड़कुड़ाहट के विषय पर,
yet no one ever questioned his motive until now.
तो भी अब तक कभी किसी ने उसके उद्देश्य पर सवाल नहीं उठाया था.
And it comes from his own family.
और ये सवाल उठाया गया उसके अपने परिवार की तरफ से.
His sister and his brother.
उसकी बहन और उसके भाई की तरफ से.
Let me give you an important principle.
मैं आपको एक महत्वपूर्ण सिद्धांत देता हूँ.
If you examine the heart of unfair criticism.
यदि आप अनुचित आलोचना के हृदय की जांच करें.
And you will find jealousy and envy lurking in the dark.
तो आप वहाँ अंधकार में ईर्ष्या और जलन को घात लगाकर बैठा हुआ पाएंगे.
Try to make sense of this criticism if you can.
इस आलोचना का कोई तुक बनाने का प्रयत्न कीजिए यदि आप कर सकते हैं.
Moses married Zipporah, a Midianite, many years earlier.
मूसा ने एक मिद्यानी स्त्री सिपोरा से विवाह बहुत वर्ष पहले किया था.
He married her before the burning bush.
उसने उस जलती हुई झाड़ी से भी पहले उससे विवाह किया था.
He married her before he was commissioned by God to deliver his people.
उसने उसके साथ परमेश्वर के द्वारा उसके लोगों को छुड़ाने के लिए नियुक्त किए जाने से पहले ये विवाह किया था.
This was before the plagues.
ये उन महामारियों से भी पहले की बात थी.
This was before the Red Sea.
ये लाल समुद्र से भी पहले की बात थी.
This was before the Sinai Desert.
ये सिनाई रेगिस्तान से भी पहले की बात थी.
This was before God revealed himself and gave Moses his commandments.
ये परमेश्वर के द्वारा मूसा पर प्रकट होने और उसे आज्ञाएं देने से पहले की बात थी.
Why criticize him now?
अब जाकर उसकी आलोचना क्यों?
I want you to notice the diabolical nature of unfair criticism.
मैं चाहता हूँ कि आप इस अनुचित आलोचना की दुष्टतापूर्ण प्रवृत्ति पर ध्यान दें.
The Bible says.
बाइबल कहती है.
You should not marry an unbeliever.
तुम एक गैर विश्वासी से विवाह ना करो.
But what Bible?
परंतु कौन सी बाइबल?
Moses was married way before the word of God was given to him.
मूसा ने ये विवाह उसे परमेश्वर का वचन दिए जाने से कहीं पहले किया था.
And that is why criticism that stems out of envy and jealousy is basically irrational.
और इसी कारण वो आलोचना जो ईर्ष्या और जलन में से निकलती है असल में अतार्किक है.
It says, my mind is made up. Don't confuse me with the facts.
ये कहती है मैंने मन बना लिया है मुझे तथ्यों के साथ मत उलझाओ.
There is something else that you need to understand.
यहाँ कुछ और भी है जो आपको समझने की आवश्यकता है.
Moses, Miriam and Aaron belonged to the same family.
मूसा मिरियम और हारून एक ही परिवार से थे.
They had the same father and mother.
उनके एक ही माँ बाप थे.
They were Moses's two older siblings.
वो मूसा के बड़े भाई बहन थे.
They too have been chosen to play a role in God's deliverance of his people.
उन्हें भी परमेश्वर के लोगों के छुटकारे में एक भाग अदा करने के लिए चुना गया था.
Miriam was the song leader.
मिरियम गीतों में अगुवाई करती थी.
And Aaron was the high priest.
और हारून महायाजक था.
In fact, it is because of their connection with Moses that they received the honor and the privilege of serving.
बल्कि मूसा के साथ उनके रिश्ते के कारण ही उन्हें सेवा का ये सौभाग्य और सम्मान प्राप्त हुआ था.
It is because of their relationship with Moses that they were in a position of authority and responsibility.
मूसा के साथ उनके रिश्ते के कारण ही उन्हें अधिकार और जिम्मेवारी का ये स्थान मिला था.
It is because of their relationship with Moses that they became prominent.
मूसा के साथ रिश्ते के कारण ही वो प्रतिष्ठित बने थे.
Then why is there this contentment and criticism?
फिर ये असंतुष्टि और आलोचना क्यों?
The scripture does not give us a clear answer as to why the criticism of Moses' wife came to this point.
वचन हमें इस बात का कोई स्पष्ट उत्तर नहीं देता कि मूसा की पत्नी की आलोचना यहाँ पर आकर क्यों सामने आती है.
Some scholars have said that Moses' first wife Zipporah died and that he married this Cushite woman without consulting with his sister Miriam.
कुछ विद्वानों का कहना है कि मूसा की पहली पत्नी सिप्पोरा मर गई और उसने अपनी बहन मिरियम के साथ सलाह किए बिना इस कूशी स्त्री से विवाह कर लिया.
If this is true, this can be the reason.
यदि ये सच है तो ये आलोचना का कारण हो सकता है.
There are some controlling people who would not want you to breathe without asking their opinion.
कई ऐसे नियंत्रण रखने वाले लोग होते हैं जो नहीं चाहते कि उनका विचार जाने बिना आप सांस भी लें.
And if they were not consulted before every decision, they can get bent out of shape in a hurry.
और यदि हर निर्णय से पहले उनके साथ परामर्श नहीं किया जाता तो वो बहुत जल्दी आपे से बाहर हो जाते हैं.
The second scenario which I am more inclined to agree with is this.
दूसरी परिस्थिति जिसके साथ सहमत होने के लिए मैं अधिक प्रभावित हूँ वो ये है.
Moses left his wife and children with his father-in-law Jethro.
मूसा ने अपनी पत्नी और बच्चों को अपने ससुर यित्रो के पास छोड़ दिया था.
So throughout the time of coming out of Egypt and organizing the people, teaching them to worship and leading them and managing them.
तो मिस्र से निकलने से लेकर अब तक लोगों को अनुशासन में रखने, उन्हें उपासना करना सिखाने और उनकी अगुवाई करने और उनका प्रबंध संभालने में
Miriam had been the premier woman.
मरियम मुख्य स्त्री रही थी.
After they settled in Sinai,
सीनै में उनके टिकने के बाद,
we are told that Jethro, Moses' father-in-law, and his brother-in-law Hobab came to visit.
हमें बताया जाता है कि मूसा का ससुर यित्रो और उसका साला होबेब भेंट करने के लिए आए.
In fact, his father-in-law gave him some very good management advice.
बल्कि उसके ससुर ने उसे प्रबंधन संबंधी कुछ बहुत अच्छी राय दी.
When they came from Midian, they most likely brought Moses' wife Zipporah with them.
जब वो मिद्यान से होकर आए तो बहुत संभव है कि वे अपने साथ मूसा की पत्नी सिप्पोरा को भी लेते आए.
And she began to get the people's attention.
और लोग उसकी बात सुनने लगे.
And Miriam is no longer the queen of the castle.
और मरियम अब महल की रानी नहीं रही.
When Moses' wife showed up, Miriam and Aaron were stewing in jealousy.
जब मूसा की पत्नी सामने आई तो मरियम और हारून जलन से जल रहे थे.
And they began to look for a reason to put Moses down.
और उन्होंने मूसा को नीचा दिखाने के लिए कारण ढूंढना प्रारंभ कर दिया.
Do you know the reason why anyone tries to put somebody else down?
क्या आप इसका कारण जानते हैं कि कोई किसी को नीचा दिखाने का प्रयत्न क्यों करता है?
Generally, it is to build themselves up.
आमतौर पर ये खुद को ऊंचा उठाने के लिए किया जाता है.
They don't like the spotlight to be on someone else.
उन्हें किसी और का प्रतिष्ठित होना अच्छा नहीं लगता.
So they spout their own wisdom to show that they are just as important.
इसलिए वो ये दिखाने के लिए कि वो भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं, अपनी बुद्धि का नल खोल देते हैं.
But here's the problem.
परंतु समस्या ये है.
Self-importance has nothing to do with God's calling upon an individual.
किसी व्यक्ति के लिए परमेश्वर की बुलाहट का आत्म महत्वता के साथ कोई संबंध नहीं है.
God doesn't seem to call important people.
लगता नहीं है कि परमेश्वर महत्वपूर्ण लोगों को बुलाता है.
He specializes in using the unimportant people.
वो महत्वहीन लोगों का प्रयोग करने का विशेषज्ञ है.
The Bible said.
बाइबल कहती है.
That it was only with Moses that God would speak face to face.
कि केवल मूसा ही था जिसके साथ परमेश्वर ने आमने सामने बात की.
Through the years, I've had some wise advice from wise men regarding receiving criticism.
वर्षों से आलोचना सहने के बारे में मैंने ज्ञानी व्यक्तियों से कुछ राय ली है.
A friend once told me.
मेरे एक मित्र ने एक बार मुझे बताया.
When people kick you in the back, rejoice. That means that you are in front of them.
जब लोग तुम्हारी पीठ पर ठोकर मारे तो आनंदित हो, इसका अर्थ है कि तुम उनसे आगे हो.
Another one really taught me to listen to criticism carefully.
एक और ने मुझे आलोचना को सावधानी से सुनना सिखाया.
If it is justified, do something about it.
यदि ये सही है तो इसका कुछ करो.
If not, ignore it.
यदि नहीं तो इसे नजरअंदाज कर दो.
In fact, there is an old proverb that goes something like this.
बल्कि एक पुरानी कहावत है जो कुछ इस प्रकार से है.
If one person calls you a donkey, pay no attention to him.
यदि एक व्यक्ति तुम्हें गधा कहता है तो उसकी तरफ कोई ध्यान न दो.
But if 10 people call you a donkey, go out and buy yourself a saddle.
परंतु यदि 10 लोग तुम्हें गधा कहते हैं तो जाकर अपने लिए एक काठी खरीद लो.
But this criticism of Moses was not only unfair and unjustified.
परंतु मूसा की ये आलोचना न केवल अनुचित और अन्यायपूर्ण थी.
But it was blatantly sinful.
परंतु ये स्पष्ट रूप से पापपूर्ण थी.
But I don't want you to miss Moses' reaction to criticism.
परंतु मैं इस आलोचना पर मूसा की प्रतिक्रिया को अनदेखा नहीं करना चाहता.
He could have lashed out and said many things.
वो चिल्लाते हुए कई कुछ कह सकता था.
And most of it would have been justified.
और इन सब में से अधिकतर सही होता.
But he didn't.
परंतु उसने ऐसा नहीं किया.
He could have accused him of hypocrisy.
वो हारून पर ढोंगी होने का दोष लगा सकता था.
But he didn't.
परंतु उसने ऐसा नहीं किया.
He could have defended himself.
वो खुद का बचाव कर सकता था.
But he did not.
परंतु उसने ऐसा नहीं किया.
Because Moses knew that if they were really concerned about his past life and his present spiritual condition, they would have approached him privately.
क्योंकि मूसा को पता था कि यदि वो सच में उसके पिछले जीवन और वर्तमान आत्मिक दशा के बारे में चिंतित थे तो वो उससे अकेले में बात करते.
Moses knew that they were serving their own purpose.
मूसा जानता था कि वो अपना उद्देश्य पूरा कर रहे हैं.
And that is why they made their accusation in public.
और इसीलिए उन्होंने सार्वजनिक रूप से उस पर दोषारोपण किया.
But Moses exhibited the forgiving spirit.
परंतु मूसा ने क्षमा करने वाले आत्मा का प्रदर्शन किया.
Now I'm not saying that it is not right sometimes to defend yourself against false accusations.
अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कई बार झूठे दोषारोपण से खुद को बचाना ठीक नहीं है.
But in this situation, Moses chose not to defend himself.
परंतु इस परिस्थिति में मूसा ने खुद का बचाव न करना ही चुना.
Why?
क्यों?
Because of his humility and his deep love for his brother and sister.
उसकी नम्रता और अपने भाई और अपनी बहन के प्रति उसके गहरे प्रेम के कारण.
But also because of his absolute belief that God is his defender.
परंतु अपने इस दृढ़ विश्वास के कारण भी कि परमेश्वर ही उसका बचाव करता है.
And God had to judge Miriam with leprosy.
और परमेश्वर को मरियम को कोढ़ का दंड देना पड़ा.
And Aaron, the high priest, had to go through the agony of pronouncing her leprosy.
और महायाजक हारून को अपनी बहन मरियम के कोढ़ की घोषणा की पीड़ा को सहना पड़ा.
But what did Moses do?
परंतु मूसा ने क्या किया?
He interceded on their behalf.
उसने उनके लिए मध्यस्थता की.
He cries to the Lord to heal Miriam.
वो प्रभु के सामने गिड़गिड़ाया कि वो मरियम को चंगा कर दे.
I often find myself not only praying for those who falsely accuse me.
मैं अक्सर खुद को न केवल उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हुए पाता हूँ जो मुझ पर झूठे दोष लगाते हैं.
But I find myself praying for opportunities to serve them.
परंतु मैं ऐसे अवसर पाने के लिए भी प्रार्थना करता हूँ जब मैं उनकी सेवा कर सकूँ.
To do something good for them in order that they will be blessed.
उनके लिए कुछ अच्छा करने के लिए ताकि उन्हें आशीष मिले.
My listening friend, I want to tell you this before I conclude.
मेरे श्रोता मित्र, समाप्त करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ.
You will never lose when you do that.
जब आप ऐसा करेंगे तो आप कभी नहीं हारेंगे.
You will always win.
आप हमेशा जीतेंगे.
Now, I'm not saying it's easy.
अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये आसान है.
But what I'm testifying to you is that it gets easier once you decide to do it.
परंतु मैं आपको इस बात की गवाही दे रहा हूँ कि जब आप ऐसा करने का निर्णय कर लेते हैं तो ये बिल्कुल आसान है.
God responded to Moses' prayer, but he would not heal Miriam instantly.
परमेश्वर ने मूसा की प्रार्थना का उत्तर दिया लेकिन मरियम को उसने तुरंत चंगा नहीं किया.
Why did God take 7 days to heal her?
उसे चंगा करने के लिए परमेश्वर ने 7 दिन क्यों लिए?
God was teaching all of his people that you cannot make false accusations and get away with it.
क्योंकि परमेश्वर अपने सब लोगों को ये सिखा रहा था कि तुम झूठे दोष लगाकर बच नहीं सकते.
My listening friends, let me ask you this.
मेरे श्रोता मित्रों, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ.
Are you a critical person?
क्या आप एक आलोचक व्यक्ति हैं?
Are you a person who criticizes people of whom you are jealous?
क्या आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो उन लोगों की आलोचना करता है जिनसे वो जलता है?
Repent of that today.
आज ही इससे पश्चाताप कीजिए.
Are you in pain from unjust criticism?
क्या आप अनुचित आलोचना की पीड़ा झेल रहे हैं?
Are you hurting to the point of sickness because someone is showering you with criticism?
क्या आप इस दुख के कारण बीमारी तक पहुंच गए हैं क्योंकि कोई आप पर आलोचना की बौछार कर रहा है?
Take them to the Lord today.
प्रार्थना द्वारा उन्हें आज ही प्रभु के पास ले चलिए.
Let him deal with your critics.
उसे आपके आलोचकों से निपटने दीजिए.
Pray for your critics.
अपने आलोचकों के लिए प्रार्थना कीजिए.
And begin to receive God's victory.
और परमेश्वर की विजय प्राप्त करना प्रारंभ कीजिए.
Until next time, I wish you God's richest blessing.
अगले समय तक मैं आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीष की कामना करता हूँ.
जीवन में मेरे जब आया प्रभु, मन आनंद से तब झूम उठा. जीवन में मेरे जब आया प्रभु, मन आनंद से तब झूम उठा. जीवन में मेरे
आशा है श्रोता कि आज के संदेश से आपको आशीष मिली है. यदि आप जीवित परमेश्वर के विषय में या उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के विषय में अधिक जानना चाहते हैं तो हमसे तुरंत संपर्क करें. और हाँ, अपनी प्रार्थना बिनतियाँ लिखना ना भूलें. यदि आप आपके विश्वास में 7 साहसिक पग नामक पुस्तिका प्राप्त करना चाहते हैं तो तुरंत हमें इस पते पर लिखें. हमारा पता है कार्यक्रम मार्गदर्शक, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश. पता एक बार फिर से सुन लीजिए. कार्यक्रम मार्गदर्शक, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश. श्रोताओं, आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं. हमारा ईमेल आईडी है mdhindi@radiovv.org, mdhindi@radiovv.org. तो श्रोताओं, अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी. तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए. नमस्कार.